ट्रैफिक लाइट चल रहा था, एक चार 1967 शनिवार को 5वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी।
ये बताना है कि गॉड का, शिव बाबा का परिचय देना होता है और बार बार यही परिचय मिलता है कि तुम शिव बाबा के साथ योग में रहते हो। तो माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अभी वो दुनियावी तूफान की तो बात ही नहीं है। ये तो माया के तूफान हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया, ये बरसात है, तूफान है, अर्थक्वेक है, ये तो कैलमिटीज हैं। प्राकृतिक कैलमिटीज, बाकी बाप जो कहते हैं कि माम एकम याद करो, ये तो अच्छी बात करते हैं ना। सभी मनुष्य भगत हैं, किसी न किसी को याद करते हैं। तो उनको बोल देना चाहिए कि देखो, क्राइस्ट का भी तो भगत होता है ना, वो क्रिश्चियंस भी तो किसी को याद करते हैं ना। क्रिएटर तो सुप्रीम सोल कहा जाता है, क्राइस्ट को तो क्रिएटर नहीं कहते हैं। बाकी तो जो भी सोल्स हैं, धर्म पिताएं हैं, वो सब चिल्ड्रंस हैं गॉडफादर की, यानी क्रिएशन है। तो धर्म पिताएं हो, उनके फॉलोअर्स हो, इन सब क्रिएशन से इनहेरिटेंस नहीं मिलता है कोई को भी, और कोई प्रकार का इनहेरिटेंस नहीं मिलता है। वर्षा मिलता है क्रिएटर से। तो आत्मा क्रिएशन कैसे हैं? और सुप्रीम गॉड फादर क्रिएटर कैसे है? क्योंकि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने से जन्म जन्मांतर जन्म के चक्र में आती रही, तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती रही, और ऐसे करते करते आत्माएं देह के बंधन में आते आते, विकारों के बंधन में आते आते अपने स्वरूप को ही भूल गई। देह का संग करते करते, देह की इंद्रियों से सुख लेते लेते आखरी अपन को देह समझ बैठी। अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल गई। देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं, और देह में जो इंद्रियां हैं वो भी विनाशी हैं। देह के साथ इंद्रियां भी खलास, आत्मा रह जाती है, लेकिन वो अपने स्वरूप को भूल गई। तो जैसे जड़बत हो गई, जैसे देह है जड़बत, तो ऐसी पत्थर बुद्धि आत्माओं को जिन्हें देहधारी धर्म पिताओं को बताते हुए ये देखा गया बार बार कि रूह कब्र दाखिल हो जाती है, अरे कब्र तो मिट्टी है, मिट्टी में रूह कैसे मिल जाएगी? अपन को मिट्टी रूपी देह समझ लेते हैं तो बाप आकर बताते हैं कि हे आत्माओं, तुम जड़बत मिट्टी नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो और सदा काल चैतन्य आत्मा हो। आत्माओं को परिचय मिलता है सुप्रीम सोल बाप से, कि जैसे मैं निराकार हूं तुम आत्माएं भी निराकार हो, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। यहां तक कि वैज्ञानिकों के सूक्ष्म यंत्रों से भी नहीं देखी जा सकती, अति सूक्ष्म है। इस आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता, कॉन्सेंट्रेट करके। परंतु किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें? तो बाप ही बताते हैं कि तुम आत्माएं ज्योति बिंदु मुआफिक हो। तुम आत्माओं का बाप, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। तो अपने असली स्वरूप पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अभ्यास करते करते अपने अनेक जन्मों को जान सकेंगे। यह आत्मा को अनेक जन्मों की पहचान क्रिएटर बाप से ही मिलती है, परंतु क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध तो साकार से होता है ना। तो निराकार गॉडफादर, निराकार आत्माओं का बाप, जब साकार मनुष्य सृष्टि के बीज में आते हैं तो उस मनुष्य सृष्टि के बीज से मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ क्रिएट करते हैं, जहां से सब आत्मा रूपी बच्चों को अपना परिचय मिलता है। इसे साबित होता है कि निराकार आत्माओं का बाप, निराकार जब तक साकार मनुष्य में ना आवे तब तक क्रिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना मुख ही नहीं है। तो क्रिएटर से ही क्रिएशन को परिचय मिलता है और वर्षा मिलता है, अपनी जानकारी का भी वर्षा मिलता है, अपने बाप की जानकारी का भी। ये पॉइंट को कोई कोई अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। पहले तो वो पॉइंट है कि वो क्रिएटर है, सबका क्रिएटर है, फादर है, फादर है तो जरूर वर्षा देता होगा ना। क्या वर्षा देता है? निराकारी स्टेज में है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, परंतु देता शरीर के द्वारा है, उसे देने वाले को सब बाप ही कहते हैं। फिर बच्चे जन्म मरण के चक्र में आते आते उस बाप को, जो निराकार आत्माओं का बाप है, उसे भूल जाते हैं। फिर कहते हैं आए करके हमको लिबरेट करो, हम देह में फंस गए, देह की इंद्रियों ने हमें बांध लिया अपने रस में, तो लिबरेट करके कहां ले जाएंगे? निराकार आत्मा को साकार देह से लिबरेट करेंगे तो जरूर निराकारी धाम में ले जाएंगे। आत्मा रूपी बच्चे कहेंगे, शरीर के साथ ही कहेंगे, क्योंकि कहना तो मुख से होता है। परंतु मन की आवाज भी तो होती है, साकार द्वारा जो आवाज निकलती है वो साकारी के पास पहुंचती है, और निराकारी मन बुद्धि की जो आवाज होती है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा, जिसे मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा जब वो प्रैक्टिस करते करते आत्मिक स्टेज में पहुंचता है तो आत्मा के धाम में वो आवाज पहुंचने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आवाज तो इंद्रिय का विषय है। हाँ, मन की आवाज पहुंच सकती है, तो मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़े, लेकिन देह अभिमानी मनुष्य देह को कंट्रोल करते हैं, योग के नाम पर, राजयोग के नाम पर देह की क्रियाएं सिखाते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, अब देह की क्रियाओं से तो देह कंट्रोल हो सकती है ना, आत्मा कैसे कंट्रोल होगी? तो पहले पहले डालना चाहिए निराकार आत्मा को, निराकार आत्माओं के घर को जानना चाहिए, पीछे देह को जानना चाहिए, देहधारियों को जानना चाहिए, तो ये झाड़ बनाया है षष्ठी रूपी वृक्ष, इसे देखेंगे, ये बुद्धि से समझाएंगे कि जैसे कोई भी वृक्ष का बीज सूक्ष्म होता है, झाड़ बहुत बड़ा होता है, तो जब वृद्धि होती है परिपक्वता झाड़ में आती है, फिर बीज तैयार होता है, जब बीज परिपक्व हो जाता है तो झाड़ से डिटैच हो जाता है, ऐसे ही है ये आत्मा, बीज है शरीर का, शरीर जैसे झाड़ है, जन्म बाई जन्म करते करते बीज परिपक्व होता है, तो बीज तो अविनाशी है, उसका विनाश तो होता नहीं, झाड़ का विनाश हो जाते हैं, ऐसे ही ये गोला समझने की बात है। चक्र चार युगों का चक्र है, ये दुनिया एक चक्र है। जैसे ड्रामा के चार सीन होते हैं तो इसमें भी चार सीन हैं, चार अवस्थाएं। दुनिया की चार अवस्थाएं हैं तो दुनिया में जो भी चीज है, जड़ हो जंगम हो, हर चीज को चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये बुद्धि से समझने की बात है। बच्चा हो, मकान हो, दुकान हो, नदी हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में हर चीज चार अवस्थाओं से पछार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, लास्ट में बरोबर हम सबको बाप घर ले जाएंगे। बाद में तो जैसे नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं, उनके द्वारा धर्म की स्थापनाएं होती हैं। पहले तो सब जानते हैं कि हिस्ट्री में भारत ही सबसे पुराना था, दीजी धर्म, देवता धर्म, उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था। तो बोलना चाहिए कि आत्माओं का बाप भारत में आते हैं, देहधारियों के बाप धर्म पिता हैं, इनका जन्म कोई भारत में नहीं होता है। तो वो सबके कोई बाप थोड़े ही हैं, जो सबका बाप है वो साहब को घर ले जाते हैं। पीछे ये अगर सुखधाम में रहते हैं, देवी देवताएं, तो उस समय तुम जो देह अभिमान में रहने वाले हो, धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हो, फॉलोअर्स, तुम सब शांति धाम में रहते हो। तो ऐसे बताने से उनकी समझ में आएगा, क्योंकि प्लान भी होना चाहिए कुछ न कुछ समझाने का। इन ब्रह्मा के पास तो ये सभी चित्र हैं, चलो चित्र न भी हैं तो ये तो हैं। उन्हें समझाने के लिए बात तो है ना, जैसे बाबा ने समझाया, गेट वे ऑफ हेवन, क्या महाभारी महाभारत युद्ध गेट वे टू हेवन, गेट वे टू शांति धाम को हो, सुख धाम को, मुक्ति धाम को, तो वो तो पहले अच्छी तरह से समझाना चाहिए। कि ये गेट है और ये हेवन का गेट कौन खोलता है, किसका गेट है? बिन, बिन माने जीता, जिसने सदैव जीता है, कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं। भारतवासी जानते हैं कि भारत के जो शास्त्र हैं उनमें एक ही व्यक्ति है, नारायण, जिसकी युद्ध में कभी हार नहीं हुई। तो सारी दुनिया को जीतने वाला है विश्व का मालिक। उसी को पुरुषार्थी जीवन में नाम दे दिए है, शिव शंकर भोलेनाथ। दो नाम क्यों दे दिए? शिव है सदा संपन्न स्टेज वाली आत्मा का नाम, और शंकर उस व्यक्तित्व का नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है जिसमें तीन आत्माएं एक साथ काम करती हैं। तो तीन आत्माओं का संकरण है, तीन पार्टधारियों का। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे तो शिव निराकार आत्माओं के बाप का नाम है, जो सदैव बिंदु है, निराकार है, सदा शिव कहा जाता है। उसका नाम कभी बदलता ही नहीं, परंतु मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कराते हैं ज्ञान के आधार पर, तब नाम पड़ता है शंकर। जो तीन आत्माओं के संकरण का पाठ, मिश्रण पाठ का नाम है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वह सब काम के आधार पर है। तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। स्वर्ग साकार है तो स्वर्ग का गेट वो साकार सो निराकार ही खोले, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं तो हेवन में नहीं जाती, सदा जीत नहीं पाती। वो तो एक ही है जो सदैव जीत पाने वाला, तो वो एक ही जाते हैं, गेट खोलते हैं नई दुनिया का। और दूसरा गेट खुलता है शांति धाम का, तो जब सुप्रीम फादर आते हैं इस बात में सुपरमेसी, बाप बनने में सुपरमेसी, ऐसा बाप जिसका कोई बाप नहीं, सभी धर्मों के फॉलोअर्स के बाप होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। परंतु उन फादर्स का भी कोई बाप है, जिसके बारे में सात धर्मों ने स्वीकार किया है कि सृष्टि के आदि में कोई बाप था। परंतु बिचारे जानते नहीं हैं, अति पुरानी बात होने के कारण, जिसे वो एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं, कहते हैं परंतु भूल गए। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, कोई भी धर्म खंड का हो, कोई भी धर्म का हो, वो सब का बाप है। वो बाप अभी इस संगम युग में आए हुए हैं, जो निराकार और साकार का मेल है, वो ही आकर के गेट खोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी जो इम्प्योर हो गए हैं, उनको ये डायरेक्शंस देते हैं सीमत देते हैं इस मनुष्य सृष्टि में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसे पहचानो। जिसकी पहचान निराकार आत्माओं का बाप ही दे सकते हैं, वो निराकार आत्माओं का बाप कहते हैं कि मुझे साकार में आए हुए बाप के समान स्वरूप को याद करो, साकार को याद करो, निराकार को याद करो। अगर निराकार स्टेज नहीं बनती है, निराकार अच्छे से याद नहीं आता है, तो बड़े रूप साकार को ही याद करो, परंतु पहचान कर याद करो। तो फिर तुम दूसरे कोई को भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। जब जान जाएंगे कि यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वरूप है, परंतु पहले तो अपन को निश्चय आत्मा का करो, कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, अविनाशी हूँ। कोई भी देहधारी विनाशी को याद न करो, फिर अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारा जो ये जो बाप है वो कट जाएगा, क्योंकि इस सारी मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, जिसके सारे पाप कट जाते हैं योग बल से। वो कट करके फिर ये जो डेविल वर्ल्ड है, राक्षसी दुनिया, उससे छुड़ा करके फिर तुमको शांति धाम ले जाते हैं, ले जाएगा। अभी अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझने का जो पुरुषार्थ करेंगे वो फिर आएंगे नई दुनिया में या शांति धाम में। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे नंबरवार वो अपने अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे कम करेंगे तो नीचे पद में आवेंगे। धर्म पिताएं तो नंबरवार होते हैं ना, नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये नंबरवार होने की बात हर एक धर्म के लिए ही है। तो ऐसी ऐसी युक्तियां बैठ करके रोज रोज पॉइंट निकालो, निकालेंगे वो जो अच्छे अच्छे सेंसिबल होते हैं, जिनकी दुनिया में अच्छी यादगारें बनती हैं। देखो अच्छी यादगार होती है जिनकी याददाश्त अच्छी होती है तो वो स्कूल में अच्छे पास होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, कोई की यादगार अच्छी है तो मैथमेटिक्स भी अच्छी तरह से, जो भी हिसाब देंगे टीचर करने के लिए तो अच्छे से कर देंगे। तो याददाश्त की बड़ी बलिहारी है। ज्योग्राफी में भी होशियार होंगे तो झट से इम्तहान दे देंगे। कोई होशियार होते हैं कोई होशियार नहीं होते हैं, तो इसमें भी अगर पॉइंट्स लिख दिए और होशियार बच्चा है समझू सेंसिबल तो उनको अपने इंग्लिश में कोई में लैंग्वेज में ट्रांसफर कर करके वो जो ईश्वरीय ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो मुख्य मुख्य देने होते हैं, तो उसमें पहले पहले इस ब्रह्मा ने भी जो मुख्य में शुरू किया कि हम शिव बाबा का आपको वो नॉलेज देंगे, उनका ऑक्यूपेशन बताएंगे, तो पहले तो ये हुआ कि कौन बच्ची है जो गॉडफादर का ऑक्यूपेशन बताती है। तो पहले तो उनके सगे संबंधियों को देखें, देखो मैं तुम जो आए हुए हैं फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नहीं तो हो तो सभी ब्रदर्स हो ना, जबकि आत्माएं हो तो ब्रदर्स हो, सोल्स हो तो सभी ब्रदर्स हो। पीछे जब रचना हुई है मनुष्यों की तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई है। प्रजा कितनी? सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी प्रजा है, प्रजा का अर्थ ही है प्रकष्ठ रूपेण जायते, प्रकष्ठ रूप से जन्म लेने वाली, मना वाइब्रेशन से जन्म लेने वाली, नहीं तो देह से जन्म लेने वाली, वाचा से जन्म लेने वाली, दृष्टि से जन्म लेने वाली, या कोई भी कर्म इंद्रियों से जन्म लेने वाली, सारी प्रजा तो नहीं होगी ना, क्योंकि इंद्रियां ही 9-10 हैं, वो बहुत प्रबल मानी जाती हैं। बलात् कहां से कहां ले जाती है, परंतु 11वीं इंद्रिय और भी है जो सभी इंद्रियों से पावरफुल है, मन, माइंड। और उस मन से संकल्प विकल्प बनते हैं, जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के मन की एकाग्रता से मानसी सृष्टि पैदा हुई। उस मानसी सृष्टि में सर्वोपरि गाया हुआ है सनत कुमार, ज्ञानियों का कंट्रोलर, योगियों का भी कंट्रोलर, ज्ञान के सत्संकल्पों से प्रैक्टिस करते करते, याद की प्रैक्टिस करते करते जो एकाग्रता पैदा होती है, कोई भी वाइब्रेशन की, वो वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। वाइब्रेशन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो उस वाइब्रेशन से जो संस्कृति पैदा हुई, संसार की रचना रची गई, उस रचने वाले को कहा जाता है प्रजापति। सारी प्रजा का संरक्षक, पति माना ही रक्षक। उस प्रजापति के तुम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, नहीं यूं तो तुम ब्रदर्स हो, परंतु शरीर में होने से सिस्टर्स और ब्रदर्स कहे जाते हो। तो आओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हैं ही ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो प्रजापिता कहते हैं मैं तुम बच्चों को जो गॉड फादर है जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, तुमको उनका ऑक्यूपेशन बता रहे, उनका ऑक्यूपेशन है ही फादर सो सन्स, बाप है ना, तो बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, सन्स उस फादर, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये दुनिया में एक कायदा बन गया कि बाप है तो बाप बच्चे को संसार में प्रत्यक्ष करे कि ये मेरा बच्चा है, और बच्चे बड़े होते हैं तो बाप का नाम बाला करते हैं। ये कोई भी समझ सके, जो समझू होगेगा वो समझेगा। तो यहां भी ऐसे ही है, सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं साकार में, मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में, तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं कि कौन है मेरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे और क्या है उनका ऑक्यूपेशन, वो जानते हैं। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, बाप का धंधा है ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय ज्ञान देना, बच्चों का भी धंधा है ईश्वरीय ज्ञान लेना और ईश्वरीय ज्ञान देना। इस ज्ञान के लेन देन में जो अव्वल नंबर द्वयम नंबर पास होते हैं, फुल पास होते हैं, उनकी फिर अव्वल नंबर द्वयम नंबर माला बनती है। अव्वल नंबर माला है आठ की और सेकेंड नंबर माला है 108 की। फिर है 16108, इसलिए तीन प्रकार की मालाएं दिखाई जाती हैं। सर के ऊपर आठ की माला देखा है शंकर का चित्र, परंतु उसे कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ, या तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ भोले भाले, क्योंकि शिव है भोला, शंकर कोई भोला थोड़े ही है, आंख खुली और सारी दुनिया का विनाश करा देते, लेकिन दोनों को इकट्ठा कर दिया। दोनों का कार्य इकट्ठा है, शिव बाप अपने बड़े बच्चे के बगैर संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और बड़े बच्चे के बगैर सारा संसार जो शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं पहचान सकता, जो साकार और निराकार का मेल है, जिसे तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा, तो ये समझाने की शुरुआत यहां से करनी चाहिए। एक चार 1967 की वाणी का 6वां पेज। तो अब बताओ बाप की ऑक्यूपेशन कैसे बताएंगे? क्योंकि सुप्रीम गॉडफादर का ऑक्यूपेशन बतावे तो तू बापों में सुप्रमेसी है बाप की, वो तो है निराकार आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं। उसके पास क्या है? निराकार आत्माओं के बाप के पास निराकार ज्ञान के सिवाय और कुछ है क्या? तो वो निराकार बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान का वर्षा देते हैं। कैसा ज्ञान? अधूरा ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान कैसे कहें? संपूर्ण की पहचान क्या और अधूरे की पहचान क्या? संपूर्ण बाप और अधूरा बाप, अधूरा बाप अधूरा वर्षा देगा या संपूर्ण वर्षा देगा? तो धर्म पिताओं को क्या कहेंगे? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि अधूरे बाप हैं या संपूर्ण बाप हैं? क्यों है? नहीं है तो निराकार का ज्ञान, लेकिन वो इसे विस्तार पूर्वक समझते भी नहीं है और दूसरों को समझाए भी नहीं सकते हैं। कहेंगे अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे अल्लाह मियां ने कहां से फरमाया? क्या आकाश से आवाज आती है? आवाज के लिए तो मुख चाहिए ना, तो उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह मियां फरमाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, अल्लाह मियां ने क्या डायरेक्शंस दिए। अरे दुनिया में ड्रामे होते हैं, नाटकबाजी करते हैं, तो ड्रामा को सिखाने वाला डायरेक्टर कहा जाता है ना। डायरेक्टर भी तो पर्दे के पीछे प्रॉम्प्टिंग करता है ना, तो ये भी सुप्रीम गॉडफादर है, ये सदा पर्दे के पीछे रहता है, इसको कोई इन आंखों से नहीं देख सकता। पर्दे के पीछे रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है और उसकी प्रॉम्प्टिंग को पूरा पूरा कौन पकड़ेंगे? हैं? सभी एक्टर्स एक जैसे होंगे क्या? पूरा पूरा पकड़ने वाला अव्वल नंबर एक्टर हीरो पार्टधारी कहा जाता है। जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है, ड्रामा में आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है। तो उसके आधार पर सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के तीनों काल का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता। किसके तीनों काल का ज्ञाता? क्या गुरु नानक के तीनों काल का ज्ञाता? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के तीनों काल का ज्ञाता? वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मध्य में आते हैं, बीच में ही आते हैं। तो बीच में ही चले जाएंगे या ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं? बीच में आते हैं, बीच में चले जाते हैं। तो उनकी जीवन कहानी को लेंगे, उनकी आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी को पकड़ेंगे, तो त्रिकालदर्शिता की बात ही नहीं। तीनों काल का ज्ञाता तब कहा जाता है जब कोई ऐसी मनुष्य आत्मा के तीनों काल को जाने जो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर सदैव रहता हो। सदा काल रहता हो तो जैसे बाप सदा शिव है, वैसे ही बच्चा भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल होना चाहिए। तो ये है बाप का ऑक्यूपेशन, जिस ऑक्यूपेशन के आधार पर बच्चे का भी नाम पड़ता है। बाप सुप्रीम सोल, त्रिकालदर्शी ज्ञानदाता, तो जिस बच्चे में आता है मुकर्रर रूप से, वो बच्चा भी भारत कहा जाता है। भा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहने वाला, सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक कोई भी जीवन का पार्ट, कोई भी जन्म का एक भी पार्ट ऐसा नहीं हो सकता जो अज्ञान युक्त हो, क्योंकि वो एक ही बाप का बच्चा है जो सुप्रीम सोल बाप के त्रिकालदर्शिता के ज्ञान को संपूर्ण हप कर लेता है। तो ऐसे बताएंगे बाप की ऑक्यूपेशन। तो ये जो आत्मा है वो है तो बहुत छोटी, क्या, लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी यादगार बनी हुई है बनियन ट्री कलकत्ते में। कौन सा वृक्ष है? बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा। दुनिया में जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें बहुत बड़ा वृक्ष है, परंतु बीज बहुत छोटा है। वो आत्मा है, स्टार मिसल है, और वो स्टार इस ब्रकुटी के बीच में रहता है जिसका नाम ही है ब्रकुटी, बरीपुरी कुटी। कैसी कुटी? बरीपुरी है। जैसे राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है या प्रजा के साथ नीचे बैठता है, तो ऐसे ही ये शरीर रूपी राज्य में आत्मा उत्तमांग में बैठती है। उत्तमांग मस्तक को कहा जाता है, और उसमें भी बरीपुरी कुटी दोनों ब्रकुटी के बीच, दोनों आंखों के बीच, जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है मेरी आंखों के नूर हैं, बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना मेरी आंखों के नूर, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में दो विशेष आत्माएं हैं, एक अव्वल नंबर जिसे राम बाप कहा जाता है और दूसरी कृष्ण बच्चा कहा जाता है, पूजा जाता है बच्चे के रूप में, वो है मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा। जो भारतीय शास्त्रों में दिखाते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जब महाविनाश हुआ तो महाविनाश के बाद जलमयी सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा दिखाते हैं, बड़े आराम से गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ। क्या है अंगूठा? आत्मा को अंगूठाकार मानते हैं ना, तो आत्मा का अंगूठा चूसता हुआ आता है, अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज दिखाई गई, आत्म मंथन की स्टेज। तो देखो ये आत्म मंथन के लिए अपन को आत्मा समझना होता है। जिस आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल दिव्य चक्षु न देवे। डिवाइन इंसाइट न देवे, ये डिवाइन इंसाइट कैसे मिलती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को मंथन करने से मिलती है। जितना जितना एकाग्र करेंगे मन बुद्धि को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में, तो बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी, और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। जिनका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलता है तो उनका चेहरे से वो मनन चिंतन मंथन झलकता है। वो अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है, जैसे क्राइस्ट को देख सकते हो, बुद्ध को देख सकते हो, गुरु नानक का चेहरा देख सकते हो, डिवाइन इनसाइट दिखाई देती है ना। चेहरा कैसा दिखाई देता है? अव्यक्त स्टेज दिखाई देती है। जबकि तुम उनको अच्छी तरह से बहुत भक्ति करो तो उनका भी तुमको साक्षात्कार हो सकता है। बड़ी भक्ति करने से तुमको ऑटोमेटिकली, ये ड्रामा में नूद है, साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे भी उनका भी साक्षात्कार तुम कर सकते हो। भी क्यों लगा दिया है? जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करने वालों को साक्षात्कार होता है। दिव्य चक्षु से भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो ऐसे ही है, बहुत भक्ति करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वास्तव में तो वो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं, उनकी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना, एकदम छोटा, तो असलियत में क्या देखेंगे? जैसे छोटी सी एक बिंदी है। अभी उनसे साक्षात्कार किया, अपन को भी जाना हम बिंदी, परंतु वो साक्षात्कार करने से तो कोई फायदा नहीं। नहीं, अच्छा वैसे ही ये बाप है। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप, तो फिर ये सुप्रीम बाप भी ऐसे ही छोटी सी बिंदी। और कोई बाबा का दूसरा शेप थोड़े ही है, जबकि हम उनको कहते ही हैं फादर और उनको कहते हैं सुप्रीम सोल, तो रूप तो एक ही होगा ना। चीटी का बाप चीटी जैसा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा। ये भी आत्मा रूपी बच्चे हैं। आत्माएं बिंदु बिंदु, जिनकी यादगार में भारत की माताएं आज भी मस्तक पर बिंदु लगाती हैं। तो सुप्रीम सोल बाप विज्योत बिंदु, हाँ, पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आत्मा बिंदु, कौन सी आत्मा किसका बिंदु, क्राइस्ट का, बुद्ध का, गुरु नानक का या सुप्रीम सोल का? कैसे जानेंगे? कहेंगे ये सुप्रीम सोल नहीं है, वो सुप्रीम सोल नहीं है। अरे सोल माने सोल, बिंदु माने बिंदु, तो वो बिंदु बिंदु सब एक जैसे हो गए ना। सिर्फ उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। क्यों? सुप्रीम यानी वो बर्थ एंड डेथ में नहीं आता है। किस बात में सुपरमेसी? फिर न उसका कोई बाप है जन्म देने वाला, न उसकी कभी मृत्यु होती है, इसलिए सुपरमेसी है, सुप्रीम बाप कहा जाता है। तो फिर उनकी महिमा भी वैसी ही करनी पड़े भाई। ये सुप्रीम सोल बड़ा नॉलेजफुल है। कौन है ये सुप्रीम सोल? बड़ा नॉलेजफुल है। ये माने कौन? ये या वो या वो या ये कौन सा नॉलेजफुल है? नॉलेजफुल है तो कैसे पता चलेगा नॉलेजफुल है? नॉलेज देगा तभी तो पता चलेगा ना है? कि बिना दिए पता चलेगा? नॉलेज है तो नॉलेज का विस्तार बताएगा, इसलिए गीता में उसको कहा गया है सांख्य सह आख्या, दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है सांख्य। माना व्याख्या सहित जो बात विस्तार से बताई जाए वो है सांख्य। और गीता में बताया है सांख्य योग अलग अलग नहीं है, जो सांख्य है वही योग है। योग माने एकाग्रता की शक्ति, और सांख्य माने उसको विस्तार में ले जाने की शक्ति। तो कौन ज्ञान को त्रिकाल दर्शिता के रूप में विस्तार में ले जाएगा है? जो ऑलराउंडर होगा इस षष्ठी रूपी चक्र में, वो ही एवरलास्टिंग विस्तार में ले जा सकता है। इस षष्ठी रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा ऑलराउंडर नहीं होगी तो ज्ञान को एवरलास्टिंग विस्तार में नहीं ले जा सकती। तो साबित होता है कि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब हैं, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु आत्मा? सुप्रीम आत्मा कही जाती है, परमात्मा कही जाती है। मनुष्य शक्ति में जो सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाला है उसे गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहत, परमात्मा आत्माओं के बीच में परम पार्ट धारी, बड़े से बड़ा परम पार्ट बजाया है तो परमात्मा हुआ, नहीं तो परमात्मा कैसे हुआ? उसके अनुभव में अनेक जन्मों की स्मृति आ जाती है। स्मृति लब्धा कब? जब देहधारियों से क्या नष्ट हो। 500 करोड़ का बाप है तो कितनों से नष्ट हो? सौ करोड़ से नष्ट हुआ। क्राइस्ट 200-250 करोड़ का बाप है, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस इस दुनिया में क्राइस्ट को अपना बाप मानते। तो क्राइस्ट कितनों से नष्ट मोहा बने तब संसार में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा कि ये अमुक व्यक्तित्व है, जिसमें ज्योति बिंदु आत्मा तो है लेकिन वो किस अंश का बाप है, कितनों से नष्ट हुआ बने 200 250 करोड़ किसियन से नष्ट हुआ बनेगा, तब डिटैच होगा, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा। ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज, बीज माने बाप। जैसे वृक्ष में पहला बीज होता है, वृक्ष में से पहला बीज कोई निकलता है ना, तो सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। ऐसे ही ये नंबरवार धर्म पिताएं हैं जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने फॉलोअर से जब तक डिटैच न हो, जब तक निष्ठो मोह न हो, तब तक संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। और प्रत्यक्ष कौन करता है? कौन प्रत्यक्ष करता है? फादर सो सन, क्या फादर है तो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। फिर धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये भी फादर है, इनको कौन प्रत्यक्ष करेगा इस दुनिया में? वो सभी धर्म वाले कहते हैं कि हमारे पैगंबर कयामत के समय में प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन कैसे प्रत्यक्ष होंगे, कब प्रत्यक्ष होंगे, कौन प्रत्यक्ष करेगा? नियम तो यही है, फादर सो सन, तो धर्म पिताओं को कौन प्रत्यक्ष करेगा? है कौन? सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल तो बिंदु है, सुप्रीम सोल जिस मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है वो है अल्लाह अब्बल दीन। दीन माने धर्म, अब्बल नंबर का धर्म का स्थापक, वो अब्बल नंबर धर्म का स्थापक सभी धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष करता है। वो है बापों का बाप, बाप होता है ना, फादर कहा जाता है, और फादर का फादर ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो वो फादर्स हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ग्रेट फादर्स। उन ग्रेट फादर्स का फादर कौन? वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे धर्म पिताएं जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं कि सृष्टि के आदि में कोई आदम हुआ, एडम हुआ, आदिदेव हुआ, परंतु उसकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तो वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, और सभी धर्म पिताओं को सृष्टि रूपी चक्र से लिबरेट करने वाला है। उन धर्म पिताओं को ही नहीं, उनके सभी फॉलोअर्स को लिबरेट करने वाला है। उन धर्म पिताओं से भी लिबरेट करता है और उनको भी लिबरेट करता है। लिबरेट माने छोड़ाना, माने कोई ने पकड़ रखा है, है तो जो 200 250 करोड़ क्रिश्चियन से हैं उनको किसने पकड़ रखा है? किसने? क्राइस्ट ने पकड़ रखा है। तो कैसे छूटेंगे? जो सब का बाप है वो सबको आकर छुड़ाता है, सबको लिबरेट करता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। एक की बात नहीं, हाँ, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल बाप, वो क्या करता है? एक को मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है या नहीं देता है? सबको देता है, सुप्रीम सोल बाप है। सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, वो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, है? अरे वो खुद जीवन मुक्ति भोगता है, भोगता है। अरे ये कैसा बाप है, खुद जीवन मुक्ति नहीं भोगता, जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव नहीं करता, तो दूसरों को देगा? करोड़पति बाप है, पहले तो करोड़ों को खुद भोगेगा ना, तब तो वर्षा देगा करोड़ का। खुद ही नहीं भोगेगा तो दूसरों को कैसे देगा? तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ये पुरुषार्थ कराने का रास्ता बताता है। क्या रास्ता? अपन को आत्मा समझ, मुझ आत्माओं के बाप को याद करो। तो वो एक ही सच्चे रूपी वृक्ष का पहला फल है जो सबसे पहले डिटैच होता है। 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि के बीच एक ही आत्मा सबसे पहले डिटैच होने वाली, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर वो ही गाइड बनता है सारी मनुष्य सृष्टि का। गाइड पीछे पीछे चलता है या आगे आगे जाता है? आगे आगे जाता है ना। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में घर की ओर ले जाने वाला, जीवन मुक्ति धाम सुख धाम की ओर ले जाने वाला, आगे आगे जाने वाला एक ही आत्मा है, हीरो पार्ट धारी। वो गाइड है, लिबरेटर भी है। लिबरेट करता है फिर गाइड करता है, कहां के लिए? आत्माओं के घर ले जाने के लिए, और फिर उसके बाद शांति धाम के बाद सुख धाम ले जाने के लिए गाइड करता है। खुद सुख धाम में जाता है या नहीं जाता है? जाता है, खुद भी जाता है और गाइड है तो पीछे पीछे चलने वालों को भी ले जाता है। तो यहां तो गाइड मनुष्य होते हैं, इस दुनिया में तीर्थों में ले जाने वाले, भगवान का रास्ता बताने वाले डुप्लीकेट गाइड होते हैं, उनको कहा जाता है गाइड। परंतु ये तो है बेहद का गाइड, इतनी सी बिंदी है और उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, तीनों काल का पार्ट भरा हुआ है, समझा ना? तो वो भी तो आएगा ना जरूर यहां। कौन? तब ही तो गाइड करके वापस साथ में ले जाएगा। है, साथ ले जाएगा आए या नहीं ले जाएगा, कहाँ कहाँ ले जाएगा? शांति धाम भी ले जाएगा और सुखधाम भी ले जाएगा। ले जाएगा या भेज देगा? है ले जाएगा, भेज देने वाली बात नहीं है, समझते हैं ना कि वो निराकार सुखधाम में भेज देगा। हेवनली गॉड फादर है तो हमको हेवन में भेज देगा नहीं, अगर भेज देगा तो फिर वो गाइड हुआ है? गाइड ऐसे कहता अच्छा ऐसे चले जाओ वहां पहुंच जाओगे, नहीं, गाइड है तो ले जाएगा ना। और फिर आएंगे तो नॉलेज जरूर देंगे, क्या आएंगे तो नॉलेज भी जरूर देंगे। ये नॉलेज है, देखो हमको ये नॉलेज मिला हुआ है, क्या कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और इस आत्मा का फादर भी इतना ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये फादर ने बताया कि मैं भी इतना ही हूं, मुझे नॉलेज देनी होती तो मैं जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा। और जरूर यहाँ स्टार भी बैठता है, आत्मा ब्रकुटि में, जिनको नॉलेज दूंगा कि तुम अमुक ये पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, क्राइस्ट हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, तो क्या करूंगा है, उनके बाजू में जाकर बैठूंगा। क्या करेगा? उनके बाजू में जाके बैठूंगा। कब? अपने शरीर से, अपनी देह से नष्टो मोहा होगा तब जाकर बैठेगा या बिना नष्टो मोहा हुए बैठेगा? हैं? अपनी देह से भी नष्टो मोहा होगा तो जाकर बैठेगा, पराई शरीर में बाजू में जाकर बैठूंगा। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, उसमें बैठ मैं बोलूंगा भी, बोल भी सकूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जिसमें मैं बैठूंगा वो बोलता रहेगा और मुझे बोलने नहीं देगा, क्या ऐसे हो सकेगा? नहीं, मैं बोलूंगा तो उसे नहीं बोलने दूंगा। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो वाचा को कैप्चर करते हैं कि नहीं? हाँ, मनसा के संकल्पों को भी कैप्चर करते हैं कि नहीं? हैं? करते हैं। ऐसे ही जब मैं पावरफुल बनूंगा, मेरी मनोबुद्धि रूपी आत्मा ब्रकुटी में सदा काल के लिए एकाग्र हो जाएगी, तो मैं जब चाहूं अपना शरीर छोड़ू, दूसरे के शरीर में प्रवेश करूं। मान लो बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हजारों हजार वाट के एटम बम बनाए हुए हैं, परंतु उनमें हिम्मत नहीं है अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन को विस्फोट करने की, यूज करने की हिम्मत है? हैं? नहीं है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था क्या, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1944 के तुरंत बाद 45 में, कितने साल के अंदर हो गया है? 24, 34 और 44, कितने साल हुए? अरे 1914 पहला विश्व युद्ध, उसके बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, कितने साल में हो गया? 30 ईयर्स में। और अभी देखो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। और इतनी देश विदेश में कसम कस चल रही है और कोई में हिम्मत नहीं है एटमिक एनर्जी का विस्फोट करने की। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मनुष्य शक्ति का बाप करता है। किस आधार पर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किस बात से नष्टो मोहा है? नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाप सुप्रीम सोल का बच्चा हूं और सारी दुनिया सुप्रीम सोल बाप का बच्चा है। बाप का बच्चा बाप के डायरेक्शन पर न चले, बाप को न पहचाने, बाप की एक्टिविटी को न जाने, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाने, तो बच्चा किस बात का? तो ये जो वैज्ञानिक हैं बुद्धिवादी, जो सुप्रीम सोल बाप के भी बाप बनकर बैठे हैं, क्या समझते हैं अपन को है? हम सारी मनुष्य सृष्टि के कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर हैं, हो ही नहीं सकते। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, ब्रह्मा हो, धर्म पिताएं तो हैं लेकिन सब देहधारी धर्म पिताएं, देह के मोह से कभी नष्ट नहीं, नष्टो मोहा होते ही नहीं। और देह से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं देहधारी, उनसे भी कभी नष्टो मोहा होते नहीं। नष्टो मोहा हो जाएं तो बाप को पहचान जाएं, और वो बाप सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है, उस परिचय को भी जान जाएं, आत्माओं के बाप को भी पहचान लें, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचान लें। जैसे आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकती, शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों के मेल से ही काम हो सकता है, निराकार आत्मा और साकार शरीर, ऐसे ही वो आत्माओं का निराकारी बाप और साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों के मेल से फिर ये सृष्टि की रचना होती है। मुंह है बापों में बाप सुप्रीमेसी का, और वो देहधारियों का बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, देहधारियों का बाप माना देह ज्यादा पावरफुल कि देह को चलाने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल? आत्मा पावरफुल, तो वो देह और देह में रहने वाला 84 जन्म के चक्र को पूरा क्रॉस करने वाला, वो 84 के चक्र को क्रॉस नहीं करता। वो क्या कहता है, जो चक्कर में आए सो गिनती में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं और न कोई गिनती में आता हूं। तो वो बताता है कि मैं जब साकार में आता हूं तो साकार मेरी स्मृति से मेरे समान जब बन जाता है, मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, ऐसे वो भी निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव बन जाए, तब ही सारी सृष्टि का स्थापना पालना और विनाश का कार्य संपन्न कर सकता है। ये संपन्न स्टेज है तो कौन हुआ, त्रिमूर्ति शिव। शिव की तीन मूर्तियां, कौन सा शिव है जिसकी तीन मूर्तियां, उसकी मूर्तियां होती हैं, मूर्ति माने साकार, मूरत अमूरत, जिसकी मूर्ति न हो उसकी मूर्ति होती है नहीं, वो तो है ही निराकार, उसकी मूर्ति कहां से होगी। वो जिसमें प्रवेश करता है वो है त्रिमूर्ति, उसको कहा जाता है गॉड फादर सुप्रीम सोल। लेकिन मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, गॉड फादर तो है लेकिन हेवनली गॉड फादर है। क्या हेवनली गॉड फादर माने, हेवन का है रचयिता, हेवनली गॉड फादर माने हेवन का रचयिता, उसको रचयिता कहेंगे। हेवन साकार होता है या निराकार होता है, हेवन साकार होता है तो रचयिता भी साकार होता है। तो बताया मैं इस सृष्टि पर जब प्रत्यक्ष होता हूं तो मुझे नॉलेज देनी होती है, जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे पावर है। क्या क्या पावर है, शरीर छोड़ने और शरीर लेने की, चाहे जब शरीर छोड़ूं चाहे जब शरीर प्रवेश करके पार्ट बजाऊं। आत्मा में पावर है इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलने का। तो मैं जो सुप्रीम हूं, क्या इसके शरीर में दूसरे के शरीर में बैठ करके हम बात नहीं कर सकते हैं। लो ये किसने बोला, दूसरे के शरीर में बैठकर हम बात नहीं कर सकते हैं। हम माना एक या दो या तीन या ज्यादा, कम से कम दो, क्योंकि आर्गन हमको मिल गया ना, मुझे आर्गन मिल गया तो मैं धनी हो गया। किसने बोला, उसने बोला, उसको आर्गन नहीं है, वो आर्गन के हिसाब से निर्धन है, और उसको आर्गन मिल गया तो धनी हो गया। आर्गन का धनी है ना, कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी दोरी है, हैं? कोई स्त्री है उससे पूछा जाता है तुम्हारा कोई धनी है, धनी माने धनी माने धनवान, किस तरह का धनवान, ऐसा धनवान, ऐसी प्रॉपर्टी का धनवान जिस धन के आधार पर वो बड़ा परिवार का मुखिया बन बैठा। तो मैं आर्गंस में बैठ करके समझाता हूं, तो ये फादर इन आर्गंस में बैठ करके ये जो जिसको कहा जाता है एडम, क्या कहा जाता है एडम, तो एडम के उस शरीर में बैठ करके नॉलेज देते हैं। जिस धर्म पिता के शरीर में भी प्रवेश करेंगे उसमें बैठ करके उसको नॉलेज देते हैं। वो बात वहां भी लागू होती है, क्या यही जानो कि देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वो तुमको जब जान लेता है तो तुम्हारी तरह जैसे तुम धर्म पिता हो वो भी धर्म पिता हो जाते। ये हिसाब है। तो एडम कहा जाता है वो मनुष्य सृष्टि का सजरा एडम से शुरू होता है। तो पहले पहले कहते हो एडम को, अल्लाह अब्बल दीन, अब्बल नंबर का धर्म पिता, तो वहां से मनुष्य सृष्टि का सिजरा शुरू होता है। तो देखो इस सिजरे से ये मात पिता भी बनते हैं। क्या कहा, ये जो एडम ईव का सिजरा है, इस एडम ईव के सिजरे से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि भी अपनी अपनी जनरेशन के मात पिता बनते हैं। जो भी धर्म पिता ऊपर से आता है कोई में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो सतयुग से लेकर जन्म लेने वाली आत्मा आती है द्वापर के आदि में या कलयुग में, और उसमें प्रवेश होता है तो माता पिता बन जाते हैं। तो इनसे देखो क्रिएशन होती है अपने अपने धर्मों की, किनसे, माता पिता से। तो क्रिश्चियन की भी क्रिएशन होती है, क्राइस्ट की क्रिएशन नई क्रिएशन होती है, यानी है तो पुरानी देवी देवता सनातन धर्म की, क्या उनको नई बनाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल आते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी पुरानी क्रिएशन है पहले से कि नहीं है, तो उसको फिर क्या करते हैं, नई क्रिएशन, नई दुनिया की देवताओं की क्रिएशन बनाते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं का, जो भी धर्म पिताओं की पहली पहली क्रिएशन बनती है वो सतो प्रधान होती है, बाद में सतो, फिर रजो, अंत में सभी धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। तो देखो धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं, उस धर्म की माता बनाते हैं, एडॉप्शन होती है। फिर पिता, धर्म पिता और माता दोनों मिलकर के नई क्रिएशन बनाते हैं। देवी देवता सनातन धर्म से कौन सी नई क्रिएशन निकली, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की क्रिएशन निकली, फिर उस समय तो इस्लाम धर्म था दुनिया में, और क्या था? अरे देवी देवता सनातन धर्म के पुराने थे, जो अपन को हिंदू कहलाने लगे, और दो के अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर बाद में बुद्ध आया भारत में, आया ना उस बुद्ध ने, फिर सतयुग के कोई नारायण में प्रवेश किया। किसमें किया होगा? दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता, तो तीसरे नारायण में प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया उसके द्वारा फिर नई सृष्टि, नई जनरेशन बना दी बौद्ध धर्म की। तो पहले अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके अपना बना करके फिर अपना नाम भी रखते हैं। क्या? पुराना नाम नहीं चलेगा देवी देवता सनातन धर्म का। क्या नाम? भी बुद्ध रख दिया, बौद्धि। जिसमें प्रवेश किया उसका नाम बदल दिया। जैसे क्राइस्ट ऊपर से आया, जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस। क्या नाम बदल दिया? जीसस नाम रख दिया। पुराना नाम था ना जीसस, वो तो देवी देवता सनातन धर्म से चला आया जीसस। फिर प्रवेश किया तो उससे पैदा हुए तो क्रिश्चियंस बन गए। उस जीसस का नाम क्राइस्ट रखा गया। क्या? आत्मा का तो नाम होता नहीं। शंकर है ये, शंकर किसकी क्रिएशन होगी? हैं? बताओ। क्योंकि नाम रखा हुआ है शरीर का, काम के आधार पर नाम होता है ना। तो क्या काम उस शरीर में? हैं? संकरण होता है, मिश्रण होता है। तीन आत्माएं कार्य करती हैं। एक तो शिव प्रवेश करता है। क्या? आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। दूसरा है ब्रह्मा, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो आत्मा प्रवेश करती है। तो तीन आत्माएं हो गई। तो ये शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं। शंकर की भ्रकुटी में सदा शिवनेत्र भी दिखाते हैं, शिव की प्रवेशता की यादगार। और उसका शरीर तो है ही राम वाली आत्मा। तो तीनों आत्माओं का जो मिक्स पार्ट चलता है उसका नाम रख दिया शंकर। तो ये शंकर क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएटर है या क्रिएशन है? है? शरीर का नाम रखा हुआ है शंकर। यूं तो सभी आत्माएं सोल से हैं। ये ब्रह्मा वो तो कोई शरीर का नाम रखा है। ब्रह्मा पहले तो नाम दादा लेखराज था ना, फिर प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा रखा। तो ये आया कहां से? ये शंकर कहां से आया? कहां से आया? है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारों से ही आया होगा ना। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी था या नहीं था? नहीं था। पहले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा से ही आया ना। तो पहले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा से आया। तो ये आया कहां से? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तो आया, परंतु क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां इसे परिचय दे सके बाप का? दे सके? नहीं दे सके। तो इसको परिचय कहां से मिला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता से है? मनन चिंतन मंथन से स्वयं कहेंगे इनका कोई माँ बाप नहीं, इनको कोई परिचय देने वाला नहीं है। पूछेंगे इनका माँ बाप कौन, तो कोई बताएगा इनका माँ बाप? कोई नहीं कह सकता कि इनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला कोई बाप है, क्योंकि बाप का ही काम होता है फादर सोज सन। तो इनका कोई माँ बाप नहीं। हाँ, अडॉप्ट किया है इसने बैठ करके, किसको? इसने बैठ कर इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इसने अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? किसको? अडॉप्शन साकार में होती है या निराकार अडॉप्ट करता है? इसने अडॉप्ट किया है। आदि में भी इसने अडॉप्ट किया था ना, तो अडॉप्ट किया किसने? ये तो बाप ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये दिखलाते ही है सूक्ष्म बतन में। सूक्ष्म बतन माने मनन चिंतन मस्तन की स्टेज। तो सूक्ष्म बतन में तो जरूर पहले तो स्थूल बतन में होगा ना, ये सूक्ष्म बतन में सीधे ही टपक पड़ा। पहले कहाँ था? पहले साकार बतन में होगा, साकार शरीर में होगा, साकार शरीर से सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाएगा कि सीधा ही चला गया पीछे सूक्ष्म बतन में जाएगा? तो ये तो टू मच होता है, परंतु ये अगर समझाती जाए तो बोलेंगे ये तो बड़ी नॉलेज फुल है, और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी, जैसे यहाँ है, है? बाबा की सभा में भी ऐसे होता है, कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं, तो उबासी देते हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई, समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं, नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जो समझाने वाला है उसको उसको नहीं देखेंगे, यहाँ वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नाली लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी, खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं, तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है, ये बिचारी होती है कि कहां हम तंग हों, बंद हों तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भागे, कहां जाकर के हम जाकर के सो जावे, नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है, तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो तुमको खुशी होती है, जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है, वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है, बहुत लंबे समय का देहभान है तो नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे थोड़े ही है, यहाँ देह अभिमान जरा हो करके बैठे, ऐसे बैठेगा कोई तो कोई धारण होगा क्या? नहीं, बैठ भी नहीं सकेंगे, उनको कोई न कोई बाहर की दुनिया की बातें अंदर में आती रहेंगी। जो अच्छे अच्छे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उन सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चों को तो सुनना ही सुनना है, उनकी इधर उधर बुद्धि नहीं जावेगी, पिनकी नहीं खावेंगे, उबासी नहीं आवेगी, उनको तो बुद्धि में आवेगा हमको जाकर सर्विस करनी है, तो हमको ये पॉइंट नोट करना है, सुनना है, धारण करना है। तो ऐसा बच्चा माथा मारेगा, और जो सर्विस नहीं करते हैं वो मत्था ही नहीं मारेंगे, बुद्धि ही नहीं लगा रहे कुछ भी। उनसे ये ज्ञान सुनने का धंधा चलता ही नहीं है, वो जो सर्विसफुल नहीं होते हैं उनसे नोट करना ये कौन जाकर के पूछे, उनसे पूछेगा ही नहीं। ये सभी बातें जो शूट बुद्धि होगा वो नोट लेगा, बुद्धि में आएगा हमको कल जाकर के इन बातों पर भाषण करना है, समझाना होगा कि ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके सुना देंगे। अब जिसको सुनना ही नहीं है, कहां जाकर के सर्विस करना ही नहीं है, वो तो इतना मत्था ही नहीं मारेंगे, ऑटोमेटिकली मत्था नहीं मारेंगे। तो ये सभी बातें हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। स्टूडेंट्स के ऐसे भी मत्थे वाले होते हैं, बुद्धि वाले, टीचर को भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर को कोई ऐसे बच्चे नहीं होते हैं या टीचर ऐसे बच्चों को नहीं समझते हैं कि कोई टीचर उल्लू होते होंगे, ऐसे तो नहीं है। जो सेंसिबल टीचर्स होते हैं उनकी नजर बच्चों के ऊपर इधर उधर फिरती रहती है, तभी तो वो टीचर सर्टिफिकेट देते हैं ना, गुड कंडक्ट का टीचर सर्टिफिकेट देते हैं, और गुड पढ़ाई गुड अटेंडेंस का सर्टिफिकेट देते हैं, कंडक्ट का भी लिखते हैं कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लिट कॉन्स का भी लिखते हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट का भी लिखते हैं, इतना दिन ये प्रेजेंट रहा इतना दिन ये एब्सेंट रहा, वो भी सर्टिफिकेट में डाल देते हैं। तो यहां भी तो ये बड़ी है ना बच्ची, ये तो देखो वेद की पढ़ाई है और वेद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, तो उन आने वालों को स्टूडेंट को समझाना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, पहले पहले है नंबर वन समझाने का फादर, वो सुप्रीम फादर है, आत्माओं का फादर है, निराकार आत्माओं का फादर, निराकार आत्माओं के फादर से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या कहीं का वर्षा मिलता है, हैं? निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, और किसको मिलता है, हैं? किसको, क्यों दो टाइम नंबर को क्यों नहीं, वो आत्मा नहीं है, आत्मा है संपूर्ण पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं या अधूरी आत्मा है, अधूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, संपूर्ण तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्मा कितनी है, एक है। तो जो एक है उसी को सारा ज्ञान देता है, देता है कि वो स्वयं लेता है, है? वो देता है या वो लेता है,
है? देता है।
और दूसरे नहीं लेते,
नहीं लेते।
हाँ, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है वही ऑलराउंड ज्ञान देता है, जिन धर्म पिताओं ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है या जिन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है वो पूरा ज्ञान लेते भी नहीं। तो पहले पहले नंबर का वो फादर है, कौन पहले पहले नंबर का वो फादर है, क्योंकि अगर कहें वो आत्माओं का बाप तो वो तो गिनती में है, गिनती में आता ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आता, तो जब चक्कर में ही नहीं आता गिनती में ही नहीं आता तो पहले नंबर का दूसरे नंबर का या बाद वाले नंबर का होने का सवाल पैदा ही नहीं होता।
मैं
बोलो बोलो हिंदी में बता दो इनको, तेलगुलू चप्पू
एक बच्चा एक बच्ची होगा क्या?
कभी कभी किसी को होता है ज्वाइंट, क्या जुड़वा बच्चे कभी कभी किसी को होते हैं, हमेशा नहीं होते। ज्यादातर बच्चा अलग फिर बाद में बच्ची अलग, या बच्ची पहले बच्चा बाद में।
जो पुरुष जन्म होता है उसके बाद स्त्री जन्म होता है,
पहले बच्चा बच्ची पहला नहीं होती वहाँ, पहले बच्चा फिर बच्ची पैदा होती तुरंत।
बच्चों की बात नहीं कहा, जैसे एक आत्मा है पहला पुरुष जन्म हुआ उसके बाद स्त्री जन्म होता है, ऐसे ही सत्य रहेगा आत्मा के लिए। द्वापर कलयुग में भी ऐसे ही स्त्री पुरुष ऐसे होता है क्या? बात है
होता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी दो बार स्त्री जन्म या कभी कभी दो बार पुरुष जन्म भी हो जाता है। कोई कोई दो बार स्त्री जन्म ले सकते हैं या कभी कभी दो बार लगातार पुरुष जन्म ले सकते हैं। मोस्टली एक जन्म एक बार, दूसरे जन्म में स्त्री। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है वो पुरुष की याद में शरीर छोड़ती है, पुरुष अंग की याद करते करते शरीर छोड़ती है, क्योंकि पुरुष अंग से जीवन भर सुख भोगा है, वो काम विकार प्रधान होने के कारण उसे अंत समय में अंतमते सुगते हो जाते। सारा जीवन जो याद किया वो अंत समय में जरूर याद आता है, इसलिए स्त्री को पुरुष अंग याद आ जाता और पुरुष का जन्म लेती। ऐसे ही पुरुष को स्त्री अंग याद आ जाता क्योंकि जीवन भर स्त्री अंग से सुख भोगा है, काम विकार की प्रधानता होने के कारण द्वापर युग से, इसलिए उसे स्त्री का जन्म मिल जाता।
निरंतर बार बार शिव रूप से होता है और कैसे होता है, स्त्री जन्म होता है कैसे होता है बार बार दूसरे
निरंतर दो जन्म, दो पुरुष दो स्त्री जन्म आता है।
हाँ,
कभी कभी वो निरंतर चलते रहते हैं।
वो कभी कभी क्या होता है, कोई में पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा हैं और ज्यादा होने के कारण होंगे उन्हीं में ही पुरुष वृत्ति के ज्यादा संस्कार, जो संगम युग में रुद्रमाला के बच्चे बने होंगे, रुद्रमाला के मण के बने होंगे, तो जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार पुरुष वृत्ति के होंगे। पुरुष वृत्ति के संस्कार होने के कारण अक्सर करके वो दो जन्म पुरुष के और एक जन्म स्त्री के लेंगे, और जो विजयमाला के होंगे वो क्या करेंगे, दो जन्म स्त्री के और एक जन्म पुरुष का लेंगे। मोस्टली ऐसे होगा।
खबर है, ब्रह्मा हमेशा शंकर को स्मरण करता है।
हाँ जी, शंकर को,
शंकर को स्मरण करता है,
स्मरण
हमेशा याद करता है शंकर ने विष्णु को याद करता है।
ऐसा नहीं है,
विष्णु ने ब्रह्मा को याद करता है, विचार
नहीं। वो तो शास्त्र लिखे हैं अलग अलग मनुष्यों ने, तो अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग तरह की बातें लिख दी हैं। नहीं तो मोस्टली शास्त्रों में ये आता है कि विष्णु शंकर को याद करता है और शंकर विष्णु को याद करता है, इसलिए पार्वती का भी झगड़ पड़ती है शंकर से, ऐसे क्यों है तुम किसकी याद में बैठे रहते हो। तो बताते हैं कि मैं विष्णु की याद में रहता हूँ। हाँ जी, तो बताया ये बेहद की पढ़ाई है और बेहद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, तो उन समझने वालों को समझाना चाहिए, पहले नंबर में वो बात समझाना चाहिए कि ये पहले नंबर का फादर है। क्या धर्म पिताएं तो बहुत हैं, नंबरवार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पहले नंबर के धर्म पिताएं कोई भी नहीं है, न इब्राहिम न बुद्ध न क्राइस्ट न गुरु न कोई। वो जो नंबर वन फादर है वो है गीता का ज्ञान देने वाला गीतापति भगवान। बाकी और जो धर्म पिताएं हैं वो गीता बीता को नहीं समझेंगे, उतनी गहराई को ज्ञान को पकड़ेंगे ही नहीं। ये अगर उनको बैठकर समझाने का ना आवे, ये जो यहाँ हैं वो उनको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेशन नेशन देख करके समझाना पड़ता है ना, जिस नेशन का है ओरिजिनल उसी नेशन के धर्म पिता की बात उसे बताएंगे तो फट से पकड़ेगा। तो उनको कृष्ण प्रश्न क्या जाने कि कृष्ण क्या होता है वो जाने और सुप्रीम बाप जाने। क्या कृष्ण की बात कौन जाने है, मनुष्य सृष्टि का बाप कृष्ण की बात जाने या तो सुप्रीम गॉड फादर जाने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम गॉड फादर जो है वो अपने पोते को वर्षा जरूर दिलाता है, जो आज भी परंपरा चल रही है भारत में कि बाप अपना वर्षा दे या न दे लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है, ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चे को जरूर मिलता है। कृष्ण से तो वो क्राइस्ट को ऊंचा रखेंगे ना अपने को। क्या कहा, दूसरे धर्म वाले क्राइस्ट कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो सबको ऊंचे में ऊंचे बाप का परिचय देना पड़ता है। पहले पहले वो परिचय दो कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप है जो लिबरेटर और गाइड है। वो कौन सा ऊंचे से ऊंचा बाप है जो गाइड भी है और लिबरेटर माने लिबरेट करने वाला है, किसी के पंजे से छुड़ाने वाला है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। कब? जब बाप समान स्टेज धारण करे तब। कौन से बाप समान? आत्माओं के बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण करे तब वो गाइड बनता है, लिबरेटर बनता है। वो कैसे आते हैं, कैसे आते हैं है? कैसे आते हैं? योग बल का अभ्यास करके आते हैं। लिबरेट किससे करते हैं? देह और देह के बंधनों से लिबरेट करते हैं। शैतान से लिबरेट करते हैं। रामलीला खेलते हैं ना, तो रावण को बड़ा देहभानी दिखाते हैं, बड़ी देह वाला। कुंभकर्ण को भी बड़ी देह वाला दिखाते हैं, और मेघनाथ को बहुत बड़ी देह दिखाते हैं। और राम को बड़ी देह वाला दिखाते हैं, बड़ा शरीर दिखाते हैं, या नॉर्मल छोटा शरीर दिखाते हैं? नॉर्मल शरीर। कहाँ की यादगार? इस समय वर्तमान में जब बाप आते हैं शिव, जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं वो है राम वाली आत्मा। उसके प्रवेश करने से उसमें देहभान जैसे होता ही नहीं, आत्माभिमानी बनता है। बनाता कौन है? बनाता कोई नहीं है, वो सिर्फ रास्ता बताता है, उस रास्ते पर वो चलता है और बनता है। क्योंकि हेवन में ये फाइव एलिमेंट्स जो काम क्रोध लोभ मोह होते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश होते हैं, वो होते ही नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होंगे, सत्यगतितम नहीं होते, होते ही नहीं है, तब ही उनको हेवन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन पांच तत्वों के ऊपर विन जीत पाली। अगर होते हैं, अगर जीत पाने वाले होते हैं मौजूद, तो उनको हेवन नहीं कहते, उनको क्या कहते? हेल कहते। उनको कहा जाता है फिर शैतान का राज्य। इस समय में शैतान का राज्य है, क्योंकि अभी ये शैतान की पुरानी दुनिया है। इसको कहा जाता है आयरन एज दुनिया, इसको कोई गोल्डन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, नई दुनिया पहले कभी हो गई है, तो नई दुनिया में कौन थे? कौन थे? देवी और देवताएं थे, उनको कहते हैं देवी। देव माने सुख देने वाले, खींच खींच कर दूसरों से सुख लेने वाले नहीं। आज की दुनिया कैसी हो गई है? सुख लेने वाली है या सुख देने वाली है? हाँ, सब सुख खींच करके भी मिले तो ले लेना चाहते, देना नहीं चाहते। और देवताओं की दुनिया में देने वाले होते हैं भाई, देवी देवताएं थे। अब ये पुरानी दुनिया हो गई है। अच्छा, इस बच्ची को स्कूल में कै बजे जाना है? किसी ने कहा 10:30 बजे। अभी ये समझाते हैं, हर एक बात के ऊपर समझाते हैं। भले कोई भी सेंसिबल हो, होते हैं ना, जितना ये सेंसिबल है। देखो, यहाँ बहुत ऐसे आते हैं वो सुन करके और चले जाते हैं। अब ये भी सुन करके चली जाती है अपने स्कूल में। देखो, 10-10, 15 पेज 15 रोज, कभी कभी तो महीने भी मुश्किल आती है, है ना ऐसे बच्ची? तो जब भी यहाँ आती है तभी इनको आए करके ये जो मुरलियां हैं टैप वाली, तो मुरलियां तो होते ही नहीं है, इनको मिलती ही नहीं है, इतने दिन यहाँ रहती नहीं है। फिर कोई जो एबल हेड है, अच्छी समझदार टीचर है, तो वो इनको बैठ करके बाबा की पॉइंट्स जो नोट की हुई हैं वो सुनाती रहेगी। नोट नहीं की होगी तो फिर इनको समझाए भी नहीं सकेगी। तो नोट की हुई होगी, उनकी चौपड़ी में लिखी हुई होगी, फिर ये सब समझाएंगे। अभी ऐसा भी यहाँ कोई होना चाहिए, ऐसा कोई है कि बाबा जो क्लास कराते हैं वो नोट करता रहे? जैसे बाबा मिसाल देते हैं, ये एक की बात नहीं है मिसाल देने की, औरों की भी बात हो सकती है। 1467 की वाणी का 8वां पेज, तो वो समझती है कि हम पॉइंट्स रखें, कभी भी कोई नया आवे तो हम उनको बैठ करके अच्छी तरह से फलानी फलानी पॉइंट जो बहुत अच्छी है वो समझाएं। वो कोई पॉइंट्स रखते हैं, हाथ उठाओ, ऐसे नए नए पॉइंट्स किन बच्चों के पास रहते हैं? किसी ने कहा इनके पास रहती है। अच्छा, इनके पास है? देखो, एक ही है बस, दूसरा कोई है ही नहीं, एक भी दूसरा नहीं है। और फिर इसके बाद ये बच्ची है क्या? बाबा की बुद्धि कहाँ चली गई है? ब्रह्मा बाबा हद के बच्चों को देख रही थी कि हद की बच्ची ये नोट में लिखती है, और बाबा की बुद्धि कहाँ चली गई बोलने वाले की? जो ब्रह्मा के अंदर बोल रहा था कहाँ चली गई है? हाँ, देखो एक ही है, एक बस, दूसरा कोई है ही नहीं, एक भी दूसरा नहीं है। और फिर ये बच्ची है, किसकी तरफ इशारा किया होगा? 67 की वाणी है, हैं? बताओ। अरे प्रजापिता तो एक बच्चा हो गया, फिर ये कहा एक बच्ची है और भी है, हैं? हैं? और ये बच्ची है। अरे माने 67 में कोई ब्रह्मा बाबा के सामने लक्ष्मी वाली बच्ची भी थी, उसकी तरफ इशारा किया, और ये बच्ची है। इनको थोड़ा शौक है क्या मुरली के पॉइंट नोट करें और फिर नोट करके दूसरों को समझावें? तो बाबा तो ये समझेगा ना कि इनको शौक है, तो कोई आवे तो मैं पॉइंट्स इनको दूंगी। तो अच्छा, फिर भी तो ये शुक्र करे क्या क्या करे फिर भी तो ये शुक्र करे कौन शुक्र क्यों शुक्र की बात कौन कहता है, है? अरे शुक्र शुक्र इबादत स्थल में कौन जाता है, है? शुक्रवार माने जुमा, मुसलमान शुक्रवार को कहते हैं जुमा, हमारे हिंदू शास्त्रों में उसे कहता है शुक्राचार्य। किसका बार? शुक्राचार्य का बार, शुक्र था शुक्रवार। तो कौन से दिन के बाद आता है? गुरुवार के बाद। माने गुरुवार का बच्चा कौन? शुक्रवार। तो शुक्र है, एक तो है ना। अभी आओ, जब भी आओ तब ही इनको ही पकड़ना, यही। और कोई अभी डल हेडेड हैं तो बुद्धू हैं, क्योंकि पॉइंट को पकड़ते ही नहीं है। अभी ये समझू है, अभी ये समझू है, इनको समझने का शौक है। किनको है? जिनके लिए कहा शुक्र है तो कम से कम, तो ये समझती है एक दिन बाबा मुझे कोई सेंटर पर जरूर भेज देंगे। बाकी है अच्छा, जिसको सर्विस का शौक होवे उनको अच्छी अच्छी पॉइंट्स का नोट कर देना चाहिए, और वो नोट भी उनका शॉर्ट हैंड में भी थोड़ा ही हो। क्या कहा हैं? कोई कोई नोट्स लेते हैं, लंबे लंबे नोट्स लेते हैं, लेकिन नहीं, जो पॉइंट नोट करना है कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड शार्प, थोड़ा ही हो। उनको मालूम है हम जो लिखेगा सो समझेगा, वो अपनी चौपड़ी में लिख देना चाहिए। कभी भी कहां जाएं उस ख्याल से कि मुझे इनको समझाना है, तो अपनी चौपड़ी से रिफ्रेश होकर के फिर भले जाएं, तो वो सर्विस अच्छी कर सकेगी। आए आ करके फिर ऐसे नहीं कहेगी ये फलानी पॉइंट मेरे पास उस समय में नहीं आई, हम भूल गए। नहीं, ऐसे सब कह देंगे। फिर जो भी भाषण वाले होंगे लौट करके आएंगे तो फिर विचार सागर मंथन जरूर चलेगा। अगर कहेंगे बोलेंगे फलानी पॉइंट उस समय में मैं सुनानी भूल गई हूं, ऐसे हो जाता है ना कभी, समझा ना? अच्छा, दूसरे दफे आएंगी जाएंगी तो जाकर के भाषण में करेंगी। ये होता ही है हमेशा। ये भी देखो नोट्स लिखती है, तभी तो ये ले जाकर के विलायत में जाती है। किसकी तरफ इशारा का? विलायत में जाएगी। चलो विलायत में न सही, कहां भी जाती है तो उनको करके फिर भाषण करती है। क्योंकि नोट्स लेने बिगर भाषण करना जरा मुश्किल होता है। ये बिचारी आती है थोड़ा थोड़ा समय, तो इस बारी जाएगी तो इनको होशियार करके भेजेंगे। जब तक इनका वो पढ़ाई का अभी है ड्रामा में पार्ट, क्या 67 की वाणी है, उस समय जिस आत्मा जिस बच्ची की बात कर रहे हैं उस समय उसकी पढ़ाई भी चल रही थी एम ए प्रीवियस की, तो बोला जब तक इनका वो पढ़ाई का है अभी ड्रामा में पार्ट है ना, पार्ट देखने में ऐसा आता है। नहीं तो बाबा का विचार था कि इनको होशियार करके इस काम में लगाए देवे। उस पढ़ाई में क्या रखा हुआ है? परंतु फिर भी कहे ना, क्या कहां भेज देने की बात बताई थी? विलायत में। तो क्योंकि इंग्लिश सीख जाए, इंग्लिश वाला अच्छी तरह से सीख जावे तो विलायत में भी भेज देवे। क्योंकि इंग्लिश बंगाल में भी इंग्लिश राज्य करके गए हैं, तो अभी इंग्लिश सीख गए, मद्रास में जाओ तो भी इंग्लिश, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं है वहाँ, उन मद्रासियों की भी नहीं है। तो देखो अभी इस दुनिया में इंग्लिश की बहुत जरूरत रहती है, ढेर जरूरत है, क्योंकि लैंग्वेज सब तो नहीं जानते हैं ना, एक दो की लैंग्वेज सब नहीं जानते। मद्रास में जावे तो भी इंग्लिश में चल जाएगा, कहां भी जावे तो इंग्लिश में चल जाएगा, दूसरी लैंग्वेज नहीं चलेगी, क्योंकि अंग्रेज लोग यहां अंग्रेजी ही सिखा कर गए हैं, तो सबको इंग्लिश चलती है। इंग्लिश में ही तो नौकरी वगैरह करते थे ना, तो इंग्लिश तो सीखनी चाहिए। इसलिए बाबा छोड़ते हैं तो इंग्लिश, सब्जेक्ट भी इंग्लिश, बाकी अगड़म बगड़म सगड़म वो नहीं चाहिए इसमें, लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश, तो इनके काम में लैंग्वेज आएगी, दूसरा कोई भी चीज इनके काम में नहीं। जो भी कुछ पढ़ती है सिर्फ लैंग्वेज इनके हाथ में आएगी। तो ऐसे होते हैं ना, बच्चे विलायत में जाते हैं, यहाँ आते हैं विलायत से, माँ से लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, माँ जानती नहीं है और वो बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे, वो माई जानती नहीं है इंग्लिश, वो आकर के इंग्लिश बोले और पढ़े ही है इंग्लिश, वो मुट्ठी माँ तो समझेगी नहीं, बड़ी तंग हो जाती है माई। फिर बोले नहीं इसको सिंधी सिखला देंगे तो मैं तो समझूं और बात करूं। अच्छा चलो बच्ची, वो तो कठिन बात है, वो भी एक देह अभिमान हो गया, बाकी ये सब बातें छोड़ करके उठते बैठते बाप को याद करो, वो तो हेर पड़ जाती है बाप को याद करने की। हेर माने अभ्यास, प्रैक्टिस पक्की हो जाती है तो फिर ऐसी अवस्था बन जाएगी कि याद करे बगैर रह नहीं सकेंगे। जैसे अभी सोचते हैं
याद भूल जाती है, फिर क्या सोचेंगे, अरे ये याद भूले कैसे, ऐसी स्थिति हो जाती है प्रैक्टिस करते हैं। बाकी सब बातें छोड़ देनी है, बाप की याद में लग जावे, हेर पड़ जावे। अच्छा उसी हेर में भी बाप को याद करना, पीछे बच्चों सभी माता पिता बाप दादा का याद करना।